परमेश्वर द्वारा नियुक्त उद्धारकर्ता। बाइबल के नए नियम के भाग में प्राप्त लूका रचित सुसमाचार से चुने हुए परिच्छेद आंखों देखा वर्णन करते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे पापों के बदले कैसे मारा गया, कब्र से जी उठा और मृत्यु पर विजय प्राप्त करके हमें परमेश्वर का उद्धार देता है। प्रभु का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूं और दलितों को छुड़ाओ और प्रभु के अनुग्रह के समय की उद्घोषणा करूं। परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। वह यर्दन के आसपास के सारे प्रदेशों में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा, जैसा कि यशायाह नबी के वचनों की पुस्तक में लिखा है। जंगल में किसी पुकारने वाले ने वाणी की, प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। हर एक घाटी भर दी जाएगी और प्रत्येक पहाड़ और पहाड़ी समतल कर दी जाएगी और टेढ़े मार्ग सीधे व उबड़ खाबड़ समतल कर दिए जाएंगे। तब सब प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेंगे। जबकि लोग आशा लगाए हुए थे और वे यूहन्ना के संबंध में अपने अपने मन में तर्क वितर्क कर रहे थे कि कहीं यही तो मसीह नहीं, तो यूहन्ना ने उन सबसे कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वह जो मुझसे अधिक शक्तिमान है आ रहा है और मैं तो इसके योग्य भी नहीं कि उसके जूते के बंधन खोलूं। वही तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यीशु का बपतिस्मा और वंशावली। ऐसा हुआ कि जब लोगों ने बपतिस्मा लिया तो यीशु ने भी बपतिस्मा लिया और जब वह प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया। तब पवित्र आत्मा कबूतर की देह के रूप में उस पर उतर आया और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। जब यीशु ने सेवा आरंभ की तो वह लगभग 30 वर्ष का था। यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यर्दन से लौटा और आत्मा उसे जंगल में इधर उधर ले जाता रहा। वहां 40 दिन तक शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ नहीं खाया। जब ये दिन बीत गए तब वह भूखा हुआ। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित न रहेगा। तब शैतान ने उसे ऊपर ले जाकर पल भर में संसार के सारे राज्यों को दिखा दिया और उससे कहा, यह सारा अधिकार और इसका वैभव मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि यह मुझे दिया गया है और मैं जिसे चाहता हूं उसे देता हूं। इसलिए यदि तू मुझे दंडवत प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को दंडवत प्रणाम कर और केवल उसी की सेवा कर। तब उसने यीशु को यरूशलेम ले जाकर उसे मंदिर की चोटी पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह स्वर्गदूतों को तेरे विषय में यह आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे शीघ्र अपने हाथों में उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पैर में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, कहा गया है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न करना। जब शैतान उसकी सब परीक्षा कर चुका तो कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। तब यीशु आत्मा की सामर्थ में गलील को लौटा और आसपास के प्रदेश में उसकी चर्चा फैल गई। वह उनके आराधनालयों में जाकर उपदेश देने लगा और सब लोग उसकी प्रशंसा करते थे। फिर वह नासरत आया जहां उसका पालन पोषण हुआ था और अपनी रीति के अनुसार सब्बत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ और यशाया नबी की पुस्तक उसे दी गई। उसने पुस्तक खोलकर वह स्थान निकाला जहां लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूं और दलितों को छुड़ाऊं और प्रभु के अनुग्रह के समय की उद्घोषणा करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी और वह उनसे कहने लगा, आज यह लेख तुम्हारे सुनते ही पूरा हुआ है। एक दिन की बात है कि वह उपदेश दे रहा था और कुछ फरीसी और व्यवस्था के शिक्षक वहां बैठे थे जो गलील और यहूदिया के प्रत्येक गांव तथा यरूशलेम से आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ्य उसके साथ थी। और देखो, कुछ लोग लकवे के मारे हुए एक मनुष्य को खाट पर उठाकर ला रहे थे। वे उसे भीतर लाकर यीशु के सामने रखने का प्रयत्न कर रहे थे। भीड़ के कारण उसे भीतर लाने का जब कोई उपाय न मिला तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर चारपाई सहित उसे बीच में यीशु के ठीक सामने उतार दिया। उनका विश्वास देखकर उसने कहा, मित्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी तर्क वितर्क करने लगे और कहने लगे, यह मनुष्य कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? प्रभु यीशु ने उनके तर्क वितर्क को भांप कर उत्तर दिया, तुम अपने मन में क्यों तर्क कर रहे हो? क्या सरल है यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए या यह कि उठ चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान जाओ कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है, उसने लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं उठ और अपनी खाट उठाकर घर चला जा। वह तत्काल उनके सामने खड़ा होकर और जिस खाट पर वह पड़ा हुआ था उसे उठाकर परमेश्वर की महिमा करते हुए घर चला गया। वे सब के सब अचंभे में पड़कर परमेश्वर की महिमा करने लगे और अत्यंत भयभीत होकर कहने लगे, आज हमने अनोखी बातें देखी है। इन्हीं दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और उसने सारी रात परमेश्वर से प्रार्थना करने में व्यतीत की। जब दिन निकला तो उसने अपने चेलों को अपने पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उन्हें प्रेरित नाम दिया, अर्थात शमौन, जिसका नाम उसने पत्रस भी रखा, और उसका भाई अंद्रियास, याकूब और यूहन्ना, फिलिप्पुस, बर्तुलुमय, मत्ती, थोमा, हलफई का पुत्र याकूब, और शमौन जो उत्साही भक्त कहलाता है, और याकूब का बेटा यहूदा, और यहूदा इस्कारियोती जो विश्वासघाती निकला। तब वह उनके साथ नीचे उतरकर समतल स्थान पर खड़ा हुआ और उसके चेलों की एक बड़ी भीड़ के साथ समस्त यहूदिया, यरूशलेम व सूर और सैदा के समुद्र तट से विशाल जन समूह वहां उपस्थित था। वे उसका उपदेश सुनने और रोगों से छुटकारा पाने आए थे और वे जो अशुद्ध आत्माओं से सताए हुए थे अच्छे किए जा रहे थे। समस्त जनसमूह उसे छूने का प्रयत्न कर रहा था क्योंकि उसमें से सामर्थ्य निकलकर उन सबको चंगा कर रही थी। जब बड़ी भीड़ इकट्ठा हो रही थी और विभिन्न नगरों से लोग उसके पास चले आ रहे थे, तो उसने उनसे दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पैरों से रौंदा गया, तथा पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उगते ही सूख गया क्योंकि उसमें नमी न थी। कुछ कंटीली झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। अन्य बीज अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने ऊंची आवाज में कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुने। उसके चेले उससे प्रश्न करने लगे कि इस दृष्टांत का अर्थ क्या हो सकता है। उसने कहा, तुमको यह प्रदान किया गया है कि तुम परमेश्वर के राज्य के रहस्य को जानो, पर दूसरों को दृष्टांत में ही बताया जाता है कि वे देखते हुए न देखे और सुनते हुए न सुने। दृष्टांत यह है, बीज परमेश्वर का वचन है, मार्ग के किनारे वाले वे हैं जिन्होंने वचन तो सुना पर शैतान आकर उनके हृदयों में से वचन को उठा ले जाता है कि वे विश्वास न करें और उनका उद्धार न हो। चट्टान पर के वे हैं जो वचन सुनने पर उसे बड़े आनंद से ग्रहण तो करते हैं, पर जड़ मजबूत न होने के कारण क्षण भर तो विश्वास करते हैं, पर जब परीक्षा आती है तो बहक जाते हैं। जो बीज कंटीली झाड़ियों में गिरा, यह तो वे हैं जिन्होंने वचन सुना और जैसे वे आगे बढ़ते हैं, वे चिंताओं, धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और परिपक्वता के लिए कोई फल नहीं लाते। अच्छी भूमि के बीज वे हैं जो वचन सुनकर अपने शुद्ध और अच्छे हृदय में उसे दृढ़ता से रखते हैं और वे बड़े धैर्य से फल लाते हैं। तब एक दिन ऐसा हुआ कि वह और उसके चेले एक नाव पर चढ़ गए और उसने उनसे कहा, आओ झील के उस पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी, परंतु जब वे नाव खेते हुए आगे बढ़ ही रहे थे तो वह सो गया और झील पर बड़ी भयंकर आंधी आई, नाव में पानी भरने लगा और उनका जीवन खतरे में पड़ गया। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी, हे स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। उसने उठकर आंधी तथा उठती हुई लहरों को डांटा और वे थम गई और शांति छा गई। उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? वे डर गए और आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे से कहने लगे, तो फिर यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मान लेते हैं? जब वह अकेला प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, तो उसने उनसे पूछा, मैं कौन हूं, इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पर कुछ कहते हैं एलिया, और अन्य लोगों के अनुसार प्राचीन नबियों में से कोई एक जो जी उठा है। उसने उनसे कहा, पर तुम मुझे क्या कहते हो? पत्रस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीह। पर उसने उन्हें चेतावनी देकर आदेश दिया कि यह बात किसी से न कहना। फिर कहा, यह अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र बहुत दुख उठाए और प्राचीनों, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा त्याग जाकर मार डाला जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसने सब लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह स्वयं अपना इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरा अनुसरण करे, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई अपना प्राण मेरे लिए खोए वह उसे बचाएगा। यदि कोई मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो डाले या उससे वंचित हो जाए तो उसे क्या लाभ होगा? जो मुझसे और मेरे वचन से लज्जित होता है उससे मनुष्य का पुत्र भी उस समय लजाएगा जब वह अपनी और अपने पिता की और स्वर्गदूतों की महिमा में आएगा। इन बातों के लगभग 8 दिन पश्चात ऐसा हुआ कि वह पत्रस, यूहन्ना और याकूब को लेकर प्रार्थना करने के लिए पर्वत पर चढ़ गया। जब वह प्रार्थना कर रहा था तो उसके मुख का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। देखो, दो मनुष्य उससे बातें कर रहे थे, वे मूसा और एलिया थे। ये महिमा में प्रकट होकर उसके मरने के विषय में बातें कर रहे थे, जिसे वह यरूशलेम में पूरा करने पर था। पत्रस और उसके साथियों को नींद ने दबा रखा था, पर जब वे पूर्ण रूप से जाग उठे तो उन्होंने उसकी महिमा को और उसके साथ उन दोनों मनुष्यों को खड़े देखा। जब वे उससे विदा होने लगे तो पत्रस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, यहां रहना हमारे लिए अच्छा है, अतः हम 3 तंबू खड़े करें, एक तेरे लिए, एक मूसा और एक एलिया के लिए। वह जानता न था कि क्या कह रहा है। वह यह कह ही रहा था कि एक बादल उठा जो उन पर छाने लगा, और जब वे बादल से घिरने लगे तो डर गए। तब बादल में से यह शब्द सुनाई दिया, यह मेरा पुत्र, मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। जब वाणी हो चुकी तो अकेला यीशु पाया गया। वे चुपचाप रहे और जो कुछ देखा था उसके विषय में उन्होंने उन दिनों किसी को कुछ नहीं बताया। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके निकट आ रहे थे कि उसकी सुने। तब फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह मनुष्य पापियों के साथ मिलता जुलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन ऐसा मनुष्य है जिसके पास 100 भेड़े हो और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को खुले चरागाह में छोड़कर उस खोई हुई को तब तक ढूंढता न रहे जब तक वह मिल नहीं जाती? जब वह उसे पा लेता है तो बड़े आनंद से कंधे पर उठा लेता है। घर पहुंचने पर वह अपने मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ मिलकर आनंद मनाओ, क्योंकि मुझे मेरी खोई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी प्रकार स्वर्ग में भी उन 99 धर्मियों से जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं, मन फिराने वाले एक पापी के लिए बढ़कर आनंद मनाया जाएगा। उसने बारहों को एक ओर ले जाकर उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जा रहे हैं और मनुष्य के पुत्र के संबंध में नबियों के द्वारा जो कुछ लिखा गया है वह सब पूरा होगा, क्योंकि वह गैर यहूदियों के हाथों सौंपा जाएगा और ठट्टों में उड़ाया जाएगा, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा और उस पर थूका जाएगा, कूड़े लगाने के पश्चात वे उसे मार डालेंगे, तब तीसरे दिन वह जी उठेगा। पर इनमें से कोई बात उनकी समझ में न आई, अतः यह बात उनसे गुप्त रही और जो बातें कही गई थी वे उन्हें समझ न पाए। इन बातों के कहने के पश्चात वह आगे यरूशलेम की ओर बढ़ता गया। ऐसा हुआ कि जब वह बैतफगे और बैथनिया में उस पहाड़ी के निकट जो जैतून कहलाता है पहुंचा, तो उसने चेलों में से दो को यह कहकर भेजा, अपने सामने के गांव में चले जाओ, वहां प्रवेश करते ही तुमको एक गद्दी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा मिलेगा, उसे खोलकर यहां ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे इसे क्यों खोल रहे हो, तो कहना प्रभु को इसकी आवश्यकता है। जो चेले भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था ठीक वैसा ही पाया। जो ही वे गद्दी के बच्चे को खोलने लगे, उसके स्वामी ने कहा, तुम इस बच्चे को क्यों खोल रहे हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसकी आवश्यकता है। तब वे उसे यीशु के पास लाए और उन्होंने अपने कपड़े गद्दी के बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठाया। जब वह चलने लगा तो वे अपने कपड़े मार्ग पर बिछाने लगे। और अब जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी भीड़ उन सब सामर्थ्य के कामों के लिए जो उन्होंने देखे थे बड़े आनंद के साथ ऊंची आवाज से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग पर शांति और सर्वोच्च स्थान पर महिमा हो। भीड़ में खड़े कुछ फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु अपने चेलों को डांट। उसने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं कि यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। जब वह निकट पहुंचा तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, यदि आज के दिन तू ही उन बातों को जानता तो शांति है, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है, क्योंकि तुझ पर वे दिन आएंगे कि तेरे शत्रु तेरे सामने मोर्चा बांधेंगे और तुझे चारों ओर से घेरकर दबाएंगे। तब वे तुझे और तेरे बालकों को मिट्टी में मिलाकर चौरस कर देंगे और तुझमें एक पत्थर पर दूसरा पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जिसमें तुझ पर कृपा की गई न पहचाना। तब वह मंदिर में गया और व्यापारियों को यह कहकर बाहर निकालने लगा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने इससे डाकुओं की खोह बना दिया है। वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश दिया करता था, पर मुख्य याजक शास्त्री और लोगों के प्रमुख उसे नाश करने का प्रयत्न करने लगे, परंतु उन्हें ऐसा करने का कोई अवसर न मिला, क्योंकि जब लोग उसकी बातों को बड़े चाव से सुनते थे। अब अखमीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है आ रहा था और मुख्य याजक और शास्त्री इस खोज में लगे हुए थे कि उसे कैसे मार डाले, क्योंकि वे लोगों से डरते थे। तब शैतान उस यहूदा में समाया
जो इस्कारियोती कहलाता था और जो बारहों में से एक था। उसने जाकर मुख्य याजकों और अधिकारियों के साथ बातचीत की कि यीशु को किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। इस पर वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे रुपए देने को सहमत हुए। उसने यह बात मान ली और वह इस सुअवसर की ताक में रहने लगा कि भीड़ से कहीं अलग उसे धोखे से पकड़वा दे। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पर्वत की ओर चला और फिर चेले भी उसके पीछे चल पड़े। जब वह वहां पहुंचा तो उसने कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। वह उनसे अलग लगभग पत्थर फेंकने की दूरी तक गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस प्याले को मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसे दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। यीशु व्याकुल होकर आग्रहपूर्वक प्रार्थना कर रहा था और उसका पसीना रक्त की बूंद के समान भूमि पर गिर रहा था। जब वह प्रार्थना करके उठा और चेलों के पास आया तो उसने देखा कि वे शोकित होकर सो रहे थे। उसने उनसे कहा, तुम क्यों सो रहे हो? उठो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। जब वह बातें कर ही रहा था, देखो एक भीड़ आ पहुंची और बारहों में से एक जो यहूदा कहलाता था उनके आगे आगे चलता आ रहा था। वह यीशु के पास आया कि उसे चूमे, परंतु यीशु ने उससे कहा, यहूदा, क्या तू मनुष्य के पुत्र को चूमकर धोखे से पकड़वाता है? जो उसके आसपास खड़े थे जब उन्होंने देखा कि क्या होने जा रहा है तो कहा, हे प्रभु, क्या हम तलवार चलाए? उनमें से किसी एक ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उसका दहिना कान उड़ा दिया, परंतु यीशु ने कहा, ठहरो, ऐसा न करो। उसने उसका कान छूकर अच्छा कर दिया। यीशु ने मुख्य याजकों और मंदिर के अधिकारियों तथा प्राचीनों से जो उसके विरुद्ध उठकर आए थे कहा, क्या तुम तलवार और डंडे लेकर किसी डाकू को पकड़ने आए हो? जब मैं प्रतिदिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहा तो तुमने मुझ पर हाथ नहीं लगाया, परंतु यह घड़ी और अंधकार का अधिकार तुम्हारा है। वे उसे बंदी बनाकर ले गए और महायाजक के घर ले चले। वे लोग जो यीशु को पकड़े हुए थे उसे ठट्टों में उड़ाकर पीट रहे थे। उन्होंने उसकी आंखों को ढापा और यह कहकर उससे पूछने लगे, भविष्यवाणी कर, किसने तुझे मारा? वे उसकी निंदा करके उसके विरुद्ध कई बातें कर रहे थे। जब दिन हुआ तो लोगों ने प्राचीनों की महासभा बुलाई और जिसमें मुख्य याजक और शास्त्री भी थे, और वे उसे महासभा में यह कहते हुए ले गए कि यदि तू मसीह है तो हमें बता। परंतु उसने उनसे कहा, यदि मैं कहूं फिर भी तुम विश्वास नहीं करोगे, और यदि मैं प्रश्न पूछूं तो तुम उत्तर नहीं दोगे। परंतु अब से मनुष्य का पुत्र परमेश्वर के सामर्थ्य की दहिनी ओर बैठाया जाएगा। तब सबने पूछा, तो क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? उसने कहा, हां मैं हूं। उन्होंने कहा, अब हमें आगे साक्षी की क्या आवश्यकता है, क्योंकि हमने स्वयं उसके मुंह से सुन लिया है। तब सारी सभा उठकर उसे पिलातुस के पास ले गई। वे यह कहकर उस पर दोष लगाने लगे, हमने इस मनुष्य को देशवासियों को बहकाते और कैसर को कर देने से मना करते और यह कहते पाया है कि मैं स्वयं मसीह राजा हूं। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसे उत्तर दिया, ठीक तू स्वयं ही कह रहा है। पिलातुस ने मुख्य याजकों और भीड़ से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। परंतु वे यह कहकर दबाव डालते रहे कि वह गलील से लेकर समस्त यहूदिया में शिक्षा दे देकर लोगों को भड़काता है, यहां तक कि इस स्थान में भी। जब पिलातुस ने यह सुना तो पूछा कि क्या यह मनुष्य गलीली है? जब उसने जाना कि वह हेरोदेस के राज्य क्षेत्र का रहने वाला है तो उसने उसे हेरोदेस के पास भेजा। हेरोदेस भी स्वयं उस समय यरूशलेम में था। जब हेरोदेस ने यीशु को देखा तो अत्यंत प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह बड़े लंबे समय से उसे देखना चाहता था। वह उसके विषय में सुना करता था, अतः उसके द्वारा कुछ चिन्ह दिखाए जाने की आशा किया करता था। उसने उससे बहुत से प्रश्न पूछे, पर यीशु ने कोई उत्तर न दिया। मुख्य याजक और शास्त्री वहां खड़े होकर बड़े जोर से दोष लगाते रहे। तब हेरोदेस ने अपने सैनिकों सहित उसे ठट्टों में उड़ाने और उसके साथ दुर्व्यवहार करने के पश्चात उसे भड़कीला वस्त्र पहनाया और पिलातुस के पास लौटा दिया। उसी दिन से हेरोदेस और पिलातुस परस्पर मित्र बन गए। इससे पहले उनमें शत्रुता थी। पिलातुस ने मुख्य याजकों, शासकों तथा लोगों को बुलाया और उसने कहा, तुम मेरे पास इस मनुष्य को विद्रोह के लिए भड़काने वाला कहकर लाए हो, और देखो तुम्हारे समक्ष इस मनुष्य को जांचने पर मैंने इस पर उन बातों का कोई अपराध नहीं पाया जिनका तुम दोष लगाते हो, न हेरोदेस ने, क्योंकि उसने इसे हमारे पास लौटा दिया है। अब देखो इसने मृत्युदंड के योग्य कोई कार्य नहीं किया है, अतः मैं इसे ताड़ना देकर छोड़ दूंगा। पर्व के दिन पिलातुस को उनके लिए एक कैदी छोड़ना पड़ता था, परंतु वे एक साथ चिल्ला उठे, इस मनुष्य का काम तमाम कर और हमारे लिए बरब्बा को छोड़ दे। यह वही था जो नगर में बलवा करने और हत्या के अपराध में बंदीगृह में डाला गया था। पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, परंतु वे यह कहते हुए चिल्लाते रहे, उसे क्रूस पर चढ़ा। तब उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों इस मनुष्य ने क्या बुराई की है? मैंने इसमें मृत्युदंड के योग्य कोई अपराध नहीं पाया, अतः मैं उसे ताड़ना देकर छोड़ दूंगा। परंतु वे ऊंची आवाज से चिल्ला चिल्लाकर पीछे पड़ गए कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, और उनके चिल्लाने का प्रभाव बढ़ने लगा। पिलातुस ने निर्णय किया कि उनकी मांग पूरी की जाए। तब उसने उस मनुष्य को जो बलवा और अपराध के कारण बंदी बनाया गया था उसकी मांग के अनुसार मुक्त कर दिया, परंतु यीशु को उनकी इच्छा पर छोड़ दिया। वे अन्य दो भी जो अपराधी थे उसके साथ मृत्युदंड के लिए ले जा रहे थे। जब वे उस स्थान पर जो खोपड़ी कहलाता है पहुंचे तो वहां पर उन्होंने उसे और उसके साथ दो अपराधियों को भी क्रूस पर चढ़ाया, एक को दाहिनी ओर और दूसरे को बाईं ओर। परंतु यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े आपस में बांट लिए। लोग समीप खड़े होकर देख रहे थे, यहां तक कि अधिकारी भी यह कहकर उस पर ताना मार रहे थे, इसने अन्य लोगों को बचाया। यदि यह परमेश्वर का मसीह अर्थात उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचाए। सैनिक भी उसके पास आकर ठट्टा करने और सिरका पिलाकर कहने लगे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर यह दोषपत्र भी लगाया था, यह यहूदियों का राजा है। जो वहां लटकाए गए थे उनमें से एक अपराधी यह कहकर उसकी निंदा कर रहा था, क्या तू मसीह नहीं? अपने आप को और हमें बचा। पर दूसरे ने उसे डांटकर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो इसी निर्णय के अंतर्गत दंड पा रहा है, और वास्तव में हमारे साथ तो न्याय हुआ, क्योंकि हम तो अपनी करनी का उचित फल भोग रहे हैं, परंतु इस मनुष्य ने कोई अपराध नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अब यह दोपहर के लगभग 12 बजे का समय था, और 3 बजे दिन तक सारे देश में अंधकार रहा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जाता रहा। तब मंदिर का पर्दा बीच से फट गया, और यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। यह कहकर उसने प्राण त्याग दिया। जब सुबेदार ने यह देखा तो वह यह कहकर परमेश्वर की बड़ाई करने लगा, निश्चय यह मनुष्य निर्दोष था। तब सारी भीड़ जो यह दृश्य देखते एकत्रित हुई थी, जो कुछ हुआ उसे जब देख चुकी तो अपनी छाती पीटती हुई लौटने लगी। उसके सब परिचित जन और वे स्त्रियां जो गलील से उसके साथ आई थी कुछ दूर खड़ी होकर यह सब देख रही थी। देखो, यूसुफ नाम एक मनुष्य जो महासभा का एक सदस्य था और सज्जन व धर्मी पुरुष था, उसने उनकी योजना और कार्य के प्रति सहमति प्रकट नहीं की थी। वह यहूदियों के एक नगर अरमतियाह का रहने वाला था और परमेश्वर के राज्य की प्रतीक्षा करता था। इस मनुष्य ने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। उसने उसे उतारकर मलमल के कपड़े में लपेटा और एक कब्र में रखा जो चट्टान में काटकर बनाई गई थी, जिसमें कभी कोई नहीं रखा गया था। वह तैयारी का दिन था और सप्त का दिन प्रारंभ होने पर था। उन स्त्रियों ने जो गलील से उसके साथ आई थी पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा और यह भी देखा कि उसका शव कैसे रखा गया है। तब उन्होंने लौटकर सुगंधित मसाले और इत्र तैयार किए। फिर सब्बत के दिन आज्ञा के अनुसार उन्होंने विश्राम किया। परंतु सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही वे स्त्रियां उन सुगंधित मसालों को लेकर जो उन्होंने तैयार किए थे कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, परंतु जब वे भीतर गई तो उन्होंने प्रभु यीशु का शव न पाया। ऐसा हुआ कि जब वे भवचक्की खड़ी थी तो देखो, दो मनुष्य झलकते हुए वस्त्र पहने उनके निकट खड़े हो गए। जब स्त्रियां भयभीत होकर भूमि पर मुंह झुकाए हुए थी तो उन मनुष्यों ने उनसे कहा, तुम जीवित को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वह यहां नहीं है पर जी उठा है। स्मरण करो कि जब वह गलील में ही था तो उसने तुमसे यह कहा था कि मनुष्य का पुत्र अवश्य ही पापी मनुष्यों के हाथों में सौंपा जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। उन्होंने उसकी बातों को स्मरण किया और कब्र से लौटकर ये सब बातें 11 को और अन्य सबको सुनाई। जिन्होंने ये बातें प्रेरितों को बताई वे मरियम मगदलिनी, योवन्ना और याकूब की माता मरियम तथा उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थी। पर ये बातें उन्हें अर्थहीन लगी और उन्होंने उनका विश्वास नहीं किया। परंतु पत्रस उठा और दौड़कर कब्र पर गया। जब उसने झुककर भीतर देखा तो उसे केवल मलमल का कफन दिखाई दिया और इस घटना पर आश्चर्य करता हुआ वह अपने घर चला गया। अपने दुख भोग के पश्चात उसने अनेक ठोस प्रमाणों से उन पर अपने आप को जीवित प्रकट किया और 40 दिन तक दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में उनसे बातें करता रहा। उसने उन्हें एकत्रित करके यह आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ना, वरन पिता की उस प्रतिज्ञा के पूर्ण होने की प्रतीक्षा करना जिसे तुमने मुझसे सुना है। यूहन्ना ने तो जल से बपतिस्मा दिया, परंतु अब थोड़े दिनों के पश्चात तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः जब वे एकत्रित हुए तो वे उसे पूछने लगे, प्रभु क्या तू इसी समय इसराइल के राज्य को पुनः स्थापित कर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों अथवा कालों का जानना जिन्हें पिता ने निर्धारित किया है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम, सारे यहूदिया और सामरिया में यहां तक कि पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे साक्षी होगे। इतना कहने के पश्चात वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से ओझल कर दिया। जबकि वह जा रहा था तो वे उसे जाते हुए आकाश की ओर एकटक देख रहे थे और देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, गलीली पुरुषों तुम खड़े खड़े आकाश की ओर क्यों देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग उठा लिया गया है वैसे ही फिर आएगा जैसे तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा है। जब प्रतिज्ञा में बताया हुआ पवित्र आत्मा प्रेरितों पर आया तो वे निडरता से प्रभु यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान के अर्थ को प्रचार करने लगे, घोषणा करने लगे, ऐलान करने लगे। आइए देखें प्रेरित पत्रस ने उस वक्त क्या कहा था। इसलिए इस्राएल का संपूर्ण घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसे प्रभु और मसीह दोनों ही ठहराया, इसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया। उन्होंने जब यह सुना तो उनके हृदय छीद गए और वे पत्रस तथा अन्य प्रेरितों से पूछने लगे, भाइयों हम क्या करें? पत्रस ने उनसे कहा, मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से तुम में से प्रत्येक बपतिस्मा ले कि तुम्हारे पापों की क्षमा हो और तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओ, क्योंकि वह प्रतिज्ञा तुम्हारे और तुम्हारे संतान के लिए और उन सब के लिए है जो दूर दूर है, अर्थात वे सब जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। लुका रचित सुसमाचार से चुने हुए वचनों से हमने समझ लिया है कि परमेश्वर द्वारा आयोजित उद्धार को लाने के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने कैसे कष्ट उठाए और मृत्यु सही। परमेश्वर ने जो महान उद्धार कार्य प्रभु यीशु द्वारा पूरा किया उसकी गवाही हमने लुका से सुनी है। उसका सारांश यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 16 और 17 में पढ़ने को मिलता है। यहां लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दोषी ठहराए, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। बाइबल के नए नियम के भाग में प्राप्त रोमियो के कलिसिया को लिखित पत्री में प्रेरित पौलुस हमें बताता है कि हम कैसे उद्धार प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर द्वारा नियुक्त किए हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के हवाले करके हम कैसे परमेश्वर के साथ शांति का मेल कर सकते हैं, ये बताया गया है कि यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृत्यु में से जीवित किया तो तू उद्धार पाएगा। मनुष्य तो हृदय से विश्वास करता है जिसका परिणाम धार्मिकता होता है और मुंह से अंगीकार करता है जिसका परिणाम उद्धार होता है।